लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हमें कब अपने जीवन में आनंद और उमंग की अनुभूति होती है, कब हमारा दिल खुशी से भर जाता है? हमारे जीवन के वे पल जब हमारी मुरादें पूरी होती दिखाई देती हैं, वे क्षण जब हमें अपने जीवन की मनचाही चीजें मिल जाती, हम जिन चीजों की आशा करते वे हमें हासिल हो जाती, तो हमारा मन और दिल आनंद और खुशी से गदगद हो जाता है। श्रोताओ, आगमन के तीसरे रविवार आराधना विधि चिंतन पाठ का सार हमारे लिए इसी खुशी और आनंद का संदेश देता है। योहन बपतिस्ता ने भी ऐसी ही खुशी की चर्चा सुनी और वह अपने शिष्यों को उस खुशी का कारण सुनने और ढूंढने भेजा। आइए हम सुसमाचार में प्रभु के वचनों का रसस्वादन करते हुए अपने आप से पूछें कि हम अपने दैनिक जीवन में कौन सी चीज की खोज करते हैं जो हमें सच्ची आनंद और खुशी की अनुभूति प्रदान करती है। वह कौन सी वस्तु है जो हमारे लिए ईश्वरीय आनंद की असल तसल्ली प्रदान करती है?
योहन ने बंदीगृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ तुम जो सुनते और देखते हो उसे योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। वे विदा हो ही रहे थे कि ईसा जन समूह से योहन के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे, हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे, बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं, बढ़िया कपड़े पहने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे, नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, फिर भी स्वर्ग राज में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में उस आनंद की खोज करने को प्रेरित करे जिसकी प्राप्ति हमें सदा अपने में आनंदित रहने और अपने जीवन को उत्साह और जोश में जीने हेतु मददगार सिद्ध होती है। श्रोताओ, नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए आनंद का संदेश सुनाते हुए कहता है कि मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, उल्लसित हो और आनंद के गीत गाए। यह थके मांदे हाथों को शक्ति देने, निर्बल बलों को सुदृढ़ करने और घबराए हुए लोगों को ढाढ़स और हिम्मत बंधाने को कहता है। यह इसलिए कि इसराइल के ईश्वर अपने लोगों को बचाने हेतु आ रहे हैं। ये बातें इसराइली प्रजा के लोगों के लिए खुशी के गीत हैं, क्योंकि उनकी मनचाही इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। उनके ईश्वर उन्हें गुलामी से छुड़ाने और उन्हें पुनः एक स्वतंत्र भूमि में बसाने हेतु आ रहे हैं। वे बाबुल के निर्वासन में रोते और विलाप करते हुए गए थे, अब वे गाते बजाते खुशी सुख शांति में लौटेंगे, क्योंकि उनके दुख और विलाप का अंत होने वाला है। श्रोताओ, वही संत याकूब के ग्रंथ से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें इस खुशी को पाने हेतु धैर्य में बने रहने का आह्वान करता है। हम किसान की तरह जो कड़ी मेहनत करने के बाद फल के आने हेतु धैर्य में बना रहता और इंतजार करता है, उसी भांति हमें भी हिम्मत हारे बिना धैर्य में बने रहने को कहा जाता है। श्रोताओ, जीवन में असल खुशी अपने में धीर बने रहने और उस धीरता में निष्ठापूर्ण ढंग से प्रतीक्षा करने में आती है। अतः धैर्य में बने रहने का अर्थ हमें अपने मन और दिल में उठने वाली भावनाओं को अंतिम समय तक सहेज कर अपने को नियंत्रित रखने से है। यह हमें अपने में उठने वाले भावनाओं के उफान में बहने से बचे रहने को सचेत कराता है। इस भांति जब हम अपने को नियंत्रित रखते तो हम अपने जीवन की गहराई में उतरते और जीवन की हकीकत से रूबरू होते हैं, जो हमें सही अर्थ में अपने जीवन के मर्म को समझने हेतु मदद करता है। और जब हम अपने जीवन के सार से वाकिफ होते तो हमारा जीवन जीने का मकसद पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाता है। श्रोताओ, जीवन को समझने हेतु हमें अपने जीवन को झांक कर देखने की जरूरत है। जब हम अपने आप को देखते और अपने जीवन में थोड़ा चिंतन करते हैं तो स्वयं जीवन के अंतःस्थल से जीवन की खुशी प्रस्फुटित होकर निकलती है। इस बात की चर्चा हमारे लिए प्रस्तुत सुसमाचार भी करता है। आज के प्रस्तुत सुसमाचार में हम खुशी के संदेश को प्रसारित होता हुआ सुनते हैं, जो बंदी गृह की दीवारों को चीरते हुए योहन बपतिस्ता के कानों तक पहुंचता है और वे उसकी पुष्टि हेतु अपने चेलों को भेजते हैं। उनके चेले स्वयं सुसमाचार अर्थात जो स्वयं यीशु ख्रिस्त हैं से यह सवाल करते हैं कि क्या वे ही वो मुक्तिदाता हैं जो दुनिया में आने वाले थे, या वे किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें। यीशु उन्हें सीधे तौर पर जवाब देने के बदले उन्हें सुसमाचार को प्रसारित करने, उन अच्छी बातों को बतलाने का निर्देश देते हैं जिन्हें वे अपनी आँखों से देखते और सुनते हैं। वे उन्हें यह भी कहते हैं कि धन्य है वह जो इन बातों और कार्यों को संपादित करने वाले पर विश्वास करता है। श्रोताओ, हम यीशु को जन समूह से यह पूछते हुए सुनते हैं कि वे निर्जन प्रदेश में क्या खोजने, क्या देखने गए थे। नबी की खोज हेतु निकले लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हुए वे योहन बपतिस्ता की महानता के बारे में कहते हैं, जो मुक्तिदाता के आने की तैयारी में उनका मार्ग तैयार करने हेतु अग्रदूत स्वरूप उनके पहले भेजे गए थे। योहन बपतिस्ता ने निष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी में अपने जीवन के कार्यों को नम्रता में बने रहते हुए पूरा किया। श्रोताओ, आगमन के तीसरे रविवार के पाठों का संदेश हमारे लिए यही है कि मुक्तिदाता के आने की तैयारी में हम अपने जीवन को ठहर कर देखें, जो हमें अपने जीवन के अच्छाइयों और खामियों से अवगत कराएगा और जिन्हें अपनी नम्रता में हम स्वीकार करते हुए अपने को मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के आगवानी हेतु तैयार कर पाएंगे।
की वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 14 दिसंबर को मिलान धर्म प्रांत के सहयोगियों एवं पादवा तथा त्रेबीजो के 120 प्रेरित सहकर्मियों से वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में मुलाकात की। उन्हें संबोधित कर संत पापा ने कहा, उनका जन्म पल्ली में पल्ली पुरोहितों एवं धर्म प्रांत के धर्म अध्यक्षों के साथ सहयोग के द्वारा हुआ है। जब येसु ने अपने शिष्यों के बीच कुछ महिलाओं का स्वागत किया जो बारहों के साथ नजदीकी से सहयोग करती थी, तब उन्होंने नारीवाद का समर्थन नहीं किया, बल्कि पिता ने उन्हें उन महिलाओं के साथ मिलाया था जिन्हें पुरुषों के समान चंगाई की आवश्यकता थी। उनमें से एक थी मरिया मक्तलेना, जिनको प्रभु ने विश्वास एवं प्रेम की विशेष कृपा प्रदान की थी और पास्का की सुबह पुनरुत्थान का शुभ संदेश देने भेजा था। पुनरुत्थान की कहानी में कई अन्य महिलाओं की भी विशेष भूमिका रही है। अतः संत पापा ने संगठन के नाम पुनरुत्थान की नारियां को उचित और सुंदर कहा। संत पापा ने दल के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे आर्थिक रूप से अथवा सीधे अपनी सेवा देकर धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के साथ सहयोग करते हुए पलियों में गरीबों और कैदियों की मदद करते हैं। उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने उनके कैरिज्म पर गौर किया। उनके कैरिज्म को एवंजेली गौदुम से लिया गया है, जो इस प्रकार है, मिशन येसु के लिए एक जुनून है किंतु साथ ही साथ उनके लोगों के लिए उत्साह है। अतः हम उनके प्रिय लोगों की सेवा में प्रयोग किया जाना चाहते हैं। वे हमें लोगों के बीच भेज दे ताकि हमारी पहचान इस सहभागिता के बिना ना हो। संत पापा ने दल से कहा कि निष्ठा का यह आयाम सामान्य लोगों के लिए नहीं है किंतु ऐसे लोगों के लिए है जिनके इतिहास समृद्धि एवं गरीबी में येसु ख्रिस्त के मिशन के आवश्यक लक्षण है, जो पिता के द्वारा इसराइल की खोई हुई भेड़ों की खोज में भेजे गए थे, जिसको उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर पूरा किया। उन्होंने कहा कि उनके इस निष्ठा की कीमत में क्रूस की कठोरता है, किंतु ईश्वर की योजना के अनुसार फलदायी और उदार है। संत पापा ने अंत में उन्हें धन्यवाद देते हुए पुनरुत्थान की खुशी और लोगों के प्रति उत्साह में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। मुंबई महाधर्म प्रांत के सामाजिक कार्य विभाग ने आगमन काल अभियान के तहत भूख और बीमारी के खिलाफ एक अभियान जारी किया है। मुंबई महाधर्म प्रांत के महाधर्म अध्यक्ष कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रेसिस ने कहा, यह योजना यूनिसेफ की मदद से जारी किया गया है। इन बच्चों को अपने पड़ोस में विकास के मुद्दों को उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों के अधिकारों का हनन न हो। अपने पुरोहिताभिषेक के 50 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में संत पापा फ्रांसिस ने रोम स्थित येसु समाज के मुखिया आवास में जेसुइट फादर मिगवेल एंजल फ्यूरितो के संकलित लेखों का विमोचन किया। अपने आध्यात्मिक संचालक फादर फ्यूरितो के लेखों की प्रस्तावना में संत पापा फ्रांसिस ने कहा है कि यह संस्करण हम सभी के लिए सांत्वना का स्रोत है, जो कई वर्षों तक उनकी शिक्षा से पोषित हुए हैं। ये लेख पूरी कलीसिया के लिए लाभदायक होगा। संत पापा ने उम्मीद जताई कि यह संकलन कई लोगों के जीवन में जड़ जमाएगा तथा फूल एवं फल लाएगा, जो उसी कृपा से सिंचित होंगे जिसके द्वारा फादर फ्यूरितो विवेकशीलता के साथ आध्यात्मिक साधना पर अपना विचार दे पाते थे।
शुक्रवार 13 दिसंबर को विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस के पुरोहिताभिषेक की 50वीं वर्षगांठ पर दुनिया भर से जाने माने लोगों ने संत पापा को हार्दिक शुभकामनाएं भेजी। कैथोलिक कलीसिया विशेष रूप से इटली के सभी धर्म प्रांतों ने संत पापा के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन किया था। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार शाम को ट्वीट प्रेषित कर सभी लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। संदेश में उन्होंने लिखा, इस वर्ष गांठ पर आपने मेरे लिए प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं भेजी हैं। उन सभी के लिए मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं और आगे भी आपकी प्रार्थना की आशा करता हूं। संत पापा फ्रांसिस ने 14 दिसंबर के ट्वीट संदेश में लिखा, विश्वास हमें जीवन की घटनाओं को आशा के साथ देखने की क्षमता देता है और हमें यहाँ तक कि अपनी असफलताओं और कष्टों को स्वीकार करने में मदद करता है। हम जानते हैं कि विश्वासियों के लिए बुराई कभी भी अंतिम शब्द नहीं हो सकती। साथ ही संत पापा ने शुक्रवार 13 दिसंबर को वाटिकन के कार्डिनल मंडल भवन में दिव्य करुणा की भक्ति के लिए समर्पित फ्रांसीसी तीर्थयात्रियों के एक समूह का अभिवादन किया और दुनिया को दिव्य करुणा के आनंद की गवाही देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दिव्य करुणा ईश्वर की असीम दया की भक्ति है, जिसे पोलैंड में संत फाउस्टिना कोवाल्स्का ने और बाद में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने विश्वव्यापी कलीसिया को दिया। वाटिकन आए तीर्थयात्री उन कलीसियाई संगठनों, धर्म संघों और आंदोलनों के सदस्य हैं जो गरीबों, प्रवासियों, बीमार लोगों, कैदियों, विकलांग लोगों के पास जाते और उनकी हर तरह से सहायता करते हैं। संत पापा ने उनकी सुंदर विविधता की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी सुंदर विविधता इस बात को उजागर करती है कि कोई भी ऐसे मानवीय गरीबी नहीं है जो ईश्वर की पहुंच से बाहर हो। संत पापा ने उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि फ्रांस की कई पल्लियों में प्रभु की करुणामय कार्यों के लिए आर्थिक दान द्वारा पल्ली पुरोहित को सहयोग दिया जाता है। दया वास्तव में परम और सर्वोच्च कार्य है जिसके द्वारा ईश्वर हमसे मिलने आते हैं। हम कितने ही गरीब या पापी क्यों न हों, ईश्वर हमारे दिलों में हमेशा के लिए प्यार करने की उम्मीद को खोलते हैं। संत पापा ने कहा कि हमारे लिए ईश्वर का प्रेम एक शब्द मात्र नहीं है, यह यीशु मसीह में ठोस रूप से प्रकट हुआ और इसे हम अनुभव करते हैं। संत पापा ने कहा कि वर्ष 2015 को उन्होंने करुणा की असाधारण जयंती का वर्ष घोषित किया था। उनकी उम्मीद थी कि नए सुसमाचार प्रचार के परिपेक्ष में ईश्वरीय करुणा को नए उत्साह और नए सिरे से प्रेरितिक कार्यों के साथ फिर से प्रस्तावित किया जाएगा। यह कलीसिया के लिए और उसके संदेश की विश्वसनीयता के लिए नितांत आवश्यक है कि वह स्वयं जीवित रहे और करुणा की गवाही दे। उसकी भाषा और उसके हाव भाव दया को संचालित करते हैं, जिससे कि वो सभी लोगों के दिलों को छू सके। आप उन्हें एक बार फिर से पिता ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करने हेतु प्रेरित करें। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।